شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آج ہم انشاءاللہ تعالی کتاب الاقضیہ کو ختم کریں گے، اور اس میں ہم نے جو پہلی دو احادیث تھیں الحمدللہ ہم نے دیکھ لی ہوئی ہیں، حدیث نمبر 1113 اور 1114. آج ہم انشاءاللہ تعالی 1115 سے سٹارٹ کریں گے، کیونکہ ہم نے یہ چیپٹر بھی ختم کر لیا اور اگلا بھی، تو کوشش ہوگی کہ آج دونوں کا ریویو مکمل ہو جائے انشاءاللہ تعالی. امید ہے پچھلی دو حدیث آپ کو، حدیث پہلی اور دوسری، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اگر کوئی کسی کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے اور کوئی گواہ یا کوئی ثبوت نہیں ہوتا اس کا، تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا. اور دوسری حدیث میں ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کسی جھگڑے کا فیصلہ کر دیں تو فرمایا کہ میں ایک انسان ہی ہوں، کوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عالم الغیب نہیں تھے کہ جو فیصلہ کر دیں گے تو آپ کو تو غیب کی خبریں ہوں اور آپ کے فیصلے جو ہیں نا وہ بالکل صحیح ہوں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر پہ ہی فیصلہ کرتے تھے، آپ کو کوئی باطنی یا کوئی غیبی باتیں معلوم نہیں ہوتی تھیں. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی ایسا فیصلہ، یعنی وحی کا نہیں، عام انسانوں کے اندر کوئی ایسا فیصلہ کر دیں جو کہ اپنے علم کے اوپر مبنی ہو، تو اس میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی وہ انسان جس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے اپنے آپ کو بری ذمہ نہ سمجھے، اور نہ ہی یہ سمجھے کہ اس کو آخرت میں کوئی اس کی سزا نہیں ہوگی، بلکہ اگر اس نے ظلم کیا ہے، وہ ظالم ہے، وہ مجرم ہے، تو وہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیں، وہ فیصلہ اس کو بچا نہیں سکے گا آخرت میں. بہت ہی ہم سب کے لیے ایک سمجھنے والی بات ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ فتوے لے لیتے ہیں یا بعض دفعہ ہم کہیں سے فیصلے لے لیتے ہیں کسی جگہ سے، کسی کورٹ سے، یا گھریلو جھگڑوں میں بھی کوئی ہماری سائیڈ لے لیتا ہے، یا کوئی ہمیں کہہ دیتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، کوئی ہماری بات پہ بلیو کر لیتا ہے، جبکہ ہم اپنے اندر جانتے ہوتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ چونکہ اس نے کہہ دیا تو اب میں سب کے سامنے سچی ہو گئی. اصل بات لوگوں کے سامنے سچا ہونے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سچا ہوں، اور جب تک کوئی اللہ کے سامنے سچا نہ ہو اس وقت تک آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، اور یہ بات ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے لیے فرما دیا تو آپ کے بعد کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کوئی غیب کا علم جانتا ہے اور وہ ایسے ہی لوٹا گھما کے کسی کا بتا دے گا کہ چور کون ہے، یا طوطے سے فال نکال کے بتا دے گا کہ چور کون ہے، یا جو بھی اس طرح کی باتیں ہیں وہ بتا سکتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے، دھوکہ ہے لوگوں کو دینا. اس کے بعد ہم حدیث اگلی پہ آتے ہیں، اور یہاں سے انشاءاللہ آج کی ہم ریویو اپنا سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا امرین، آپ بتائیں گی میرے خیال، ہاں جی میرے خیال آپ انمیوٹ ہو گئی ہیں، آپ بتائیں گی کہ کس صورت میں ایک بیوی کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بغیر مرضی کے یا بغیر اجازت کے یا بغیر اس سے کوئی بات پوچھے ہوئے اس کی جیب سے پیسے نکال سکتی ہے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی اس صورت میں جب اس کا شوہر پیسے رکھنے کے باوجود بخیل ہو اور اپنے بچوں اور بیوی کے اوپر ان کے جائز حقوق کے لیے استعمال نہ کرتا ہو، اور وہ صرف اتنا ہی اس میں سے اس کو بتائے بغیر لے سکتی ہے جس سے وہ اپنے بچوں کی یا اپنی کوئی ضرورت पूरी कर सकती हो, ये नहीं कि वो अपने रिश्तेदारों को और बाकी लोगों को उससे देने लग जाए और उससे और किस्म का फायदा उठाने लग जाए। तो इस सूरत में जब वो इस चीज में काफी बुखल करता हो और उसका हाथ बहुत हो, हालांकि वो इस्तात रखता हो कि वो उनपे उनको दे सकता हो।
शाबाश, बहुत इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया माशाल्लाह, कि यानी उस सूरत में सिर्फ औरत ले सकती है जब वाकईतन आदमी जो है ना वो बीवी बच्चों के हकूक नहीं अदा करता और इस तरह से वो भी तंग हो रहे हैं, जबकि आदमी के पास है भी, ये नहीं है कि वो इतना गरीब है। एक तो होता है कि गरीब है बेचारा नहीं कर सकता, फिर बीवी तंग करे और कहे कि हमें चाहिए, वो तो चलो नहीं, उसके पास है ही नहीं है तो क्या। लेकिन एक बंदा अफोर्ड कर सकता है, सब कुछ है, फिर भी नहीं खर्च करता, और ये तो खर्च करना उसकी जिम्मेदारी है। ये देखे ना, वो उस जगह पे खर्च नहीं कर रहा जहाँ पे उसकी जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर खर्च करने की उसको अल्लाह की तरफ से एक उसके ऊपर एक फर्ज आयद किया गया, वहां पे नहीं खर्च करता, तो तब औरत ले सकती है। ऐसे नहीं है कि अब हमने कोई पार्टी करनी है, अब मैं अपने लिए कोई जेवर खरीद लूं, अब मैं अपने सहेलियों को बुला लूं, अब मैं फलानी, ये तो देते ही नहीं है, चलो अब इनकी जेब से ऐसे ही निकाला जाए, उस सूरत में नहीं ले सकती। ठीक है ना, यानी अगर वो सही जो उसकी जिम्मेदारी है, जो उसका फर्ज है, उसमें कोताही कर रहा है तो तब लेगी। अब इसके बाद ये नहीं समझा जा सकता कि अब औरत को इजाजत मिल गई है, जिसका भी शौहर कंजूस है वो सारी अपने शौहर के जेब से निकालने लगे। बाज आदमी कंजूस होते हैं लेकिन अपने बच्चों पे स्पेंड करते हैं, अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, मगर फिर भी औरतों को बाज दफा शिकायत होती है कि जितना वो चाहती हैं उतना नहीं खर्च होता, जिस तरह वो मतलब इधर उधर स्पेंड करना चाहती हैं या अपनी एक्स्ट्रा शॉपिंग करना चाहती हैं, तोहफे तहाई खरीदना चाहती हैं किसी के लिए भी, वहां पे नहीं खर्च हो रहा। तो उसमें जाहिर है कि उसमें ये नहीं इजाजत दी गई, बल्कि ये तो उस सूरत में है जहाँ पे वो अपनी जिम्मेदारी से कोताही कर रहा है, वो जाहिर है उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसके ऊपर ये फर्ज है, अब वो नहीं पूरा कर रहा तो फिर बीवी उसके उसमें से निकाल सकती है। तो और वो कितना निकालेगी ये भी जैसे इन्होंने बताया कि इंसाफ से बात भी इंसाफ की करनी चाहिए, कि कोई औरत जो शिकायत कर रही है वो देखे वाकई ऐसा है भी या ऐसे ही बस अयाशी के लिए हम सोच रहे हैं कि हमने वेकेशन पे जाना है या उसके लिए, तो उसके लिए निकाल लूं या मैं थोड़े थोड़े जोड़ जोड़ के एक तरफ रखती जाऊं, कुछ इस तरह की चीजें उसमें नहीं इजाजत मिलती हमें। और फिर हम आगे भी देखते हैं वही हदीस है कि जिसके अंदर हिंद ने ऐसा पूछा था, और हमें यहाँ पे अच्छी तरह से मालूम हो गया कि कितना कौन खर्च कर सकता है, और ये भी मालूम हो जाता है कि हिंद मुसलमान हो गई थी और अल्लाह ने इनको और इनके शौहर को तौफीक दी इस्लाम लाने की, और उसके बाद वाकई पक्के मुसलमान बनने की, यानी कोई मुनाफ़क़त नहीं थी। जब ये कुफर में थे तब भी बहुत सख्त थे, और जब इस्लाम में आई हैं तो फिर भी कह रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से ज़्यादा मुझे किसी और का घराना, उनकी इज्जत से ज़्यादा मुझे किसी और घराने की इज्जत के ऊपर इतनी खुशी नहीं है। तो यानी जब मुसलमान भी हुई हैं तो ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि फिर पक्की मुसलमान हुई हैं। अच्छा, अगली हदीस जो है ये बहुत ही अहम हदीस है। पहले तो इशरत आप बताएंगी कि किन चीज़ों को कहा गया कि अल्लाह ताला ने उनको नापसंद किया है या अल्लाह ने उनको हराम किया है। एक तो हमें हुरमात जो है ना वो कुरान करीम से मालूम होती हैं, और हदीस से भी हमें पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें हराम हैं। जी, आप कुछ बताएंगी।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्लाह व बरकातुहू।
जी, एक तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो माँ बाप का नाफरमान है, दूसरा लड़कियों को जिंदा दफन करना, और तीसरा लोगों का माल नाजायज तरीके से दबा लेना, और ज्यादा से कसरत से बात करना या फजूल बातें करना और माल को जाया करना, ये मकरूह करार दिया गया है।
और हकूक के बारे में क्या?
हुकूक जितने अल्लाह ने लिखे हुकूक अदा करना, वाजिब हुकूक अदा करना जरूरी है, सादा अदाई ना करना वो भी बहुत बड़ा मकरू गुनाह मकरू है वो भी है।
यहाँ पे हदीस के अंदर है अल्लाह हराम अलैकुम हुकूकुल उम्महात, उम्महात की नाफरमानी, तो आप कह रही हैं वालदैन की, तो ये फिर कैसे आया यहाँ पे? तो माओ की नाफरमानी कहा गया,
तो उसका ये वालिदैन जैसे दो दो का तस्मिया होता है, तो ये दोनों जैसे आ जाते हैं वालिद वालिदा।
सही बिल्कुल, यानी यहाँ पे सिर्फ माँ मुराद नहीं है, याद रखें यहाँ पे माँ बाप दोनों की बात आ रही, क्योंकि उम्महात आया और इसके अंदर माँ और बाप दोनों शामिल हैं। और किस चीज का और बच्चियों को जिंदा दफन करना, और इसके अंदर भी सारे वो तरीके जिसके अंदर बच्चे के अंदर जान पड़ जाती, जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा इशरत, बच्चे में जान पड़ जाए माँ के पेट में और उसके बाद पता चल जाए कि ये बच्ची है और उसको अबॉर्ट करा दिया जाए, ये भी जिंदा दफन करना है आज के वक्त में। और इसी तरह किसी की बच्ची पैदा हो जाती है और उसके बाद कोई ऐसे तरीके करके उसको मार दिया जाए, वो भी जिंदा दफन करने में है, और ये इसको भी हराम करार दिया गया है, हराम। ठीक है, अच्छा अच्छा कुलसुम आप बताएंगी कि वह मना है वाहत कि इसका मतलब क्या
है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम
वरहमतुल्लाह। किसका मतलब पूछा आपने?
इसी में जहाँ पे बच्चियों को जिंदा दफन करने की बात है उससे आगे है वमना अवाहात।
वमना अवाहात यानी ये जो हकूक की अदायगी है, यानी एक दूसरे का जो माल नजायज तरीके से दबाना।
हकूक की अदायगी में मतलब क्या है यहाँ पे कि हकूक की अदायगी ना देना दूसरे को,
यानी जिनके हकूक, यानी आप किसी की हक है आपके ऊपर किसी का, आप वो अपना हकूक पूरे नहीं कर रहे, तो ये उसमें आता है ना।
अच्छा,
यानी किसी का माल भी उसमें हो सकता है कि नजायज तरीके से किसी का माल आपने ले लिया, यानी हराम तरीके से, तो वो भी इसमें आ जाता। जिस तरह ये विरासत के देखें अक्सर होता लोगों के घरों में कि वो नहीं देते उनको जो उनका हक होता है लड़कियों का, तो वो एक नजायज तरीके से ही वो होता ना, तो हराम ही होता उनके लिए जो मार लेते हैं हक उनका ना।
सही, मगर यहाँ पे एक और खास तरह की हकूक की अदायगी ना देना है, वो किस तरह की है?
हकूक की अदायगी मना बहुत, यानी ये सारे ही जितने बताए गए हैं उनके बारे में है कि ये
सही तो कहा है कि हक ना देना, मगर थोड़ा सा इसके अंदर और भी एक बात है जो बहुत अहम है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ फिर आप सुनिएगा, इसको नोट कर लें। जज़ाकअल्लाह खैरन, ये बात इसके अंदर है कि ना तो देना हकूक, लेकिन जब अपनी बारी आए तो फिर बहुत शेर हो जाना हकूक मांगने में, फिर बहुत हकूक के मुतालबे करना, फिर ह्यूमन राइट्स याद आ जाना और विमेन राइट याद आ जाना और ये सब। और जब कि मैंने हक देना है, मैं बीवी हूँ या मैं कोई भी किसी रोल में भी आप ले लें, हमसाई हूँ या मैं दोस्त हूँ, जब अपना बारी आए तो तब तो इंसान को याद ही ना रहे कि मैंने भी कोई हक अदा करना है। लेकिन कहने ये तो मेरा हक है, ये तो मैं लूंगी, ये तो मैं ऐसे करूंगी, तो भाई आप भी तो हक अदा करने वाले बने ना। ये उस वक्त की बात है जब इंसान अपने, एक तो वैसे ही मतलब हकूक ना देना किसी के वो तो है ही गुना, मगर खास तौर पे यहाँ पे वो बताया गया है जब कि खुद तो देते नहीं है और लेने के मामले में बहुत तेज है वो। तो ये हम अगर देखें तो हम सभी अपने अपने गिरेबानों में झांकें और ये सोचें, जब भी हम कोई बात करते हैं मेरा शौहर तो ये नहीं करता, वो तो ऐसे नहीं करता, या मेरे तो ससुराल ऐसे हैं या वो वैसे हैं, या किसी से भी जिनसे भी मुझे शिकायत है, जब मैं ये बात करने लगूं तो मैं सोचूं कि मेरा फिर उनकी तरफ रवैया क्या है, ये भी तो मैं देखूं ना, मैं उनकी कितनी हकूक अदा करती हूँ, मैं कितनी आगे बढ़ के उनके लिए करती हूँ, जो अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर मुझे बहुत शिकायत होगी, लेकिन जब मैं नहीं करती तो तब मुझे पता भी नहीं चलता कि मैंने नहीं किया। अगर शौहर नहीं अपने हकूक पूरे कर रहा फिर मैं क्यों करूं, मैं तो वैसे ही नहीं, तो पहले ही नहीं कर रहे, तो मैं तो अब फिर आपको मांगने का भी हक नहीं। तो इसमें हकूक देने लेने के अंदर ऐसे नहीं होता कि इंसान सिर्फ लेने वाला तो बहुत हो, देने के मामले में बुखल करे या देने के मामले में उसको याद ही ना रहे कि मेरे ऊपर भी तो कोई फराइज आयद होते हैं, मैं कितना करती हूँ दूसरे से। तो एहसान के लेवल पे जाके चाहना कि वो मेरे साथ मामला करे और खुद अदल तक भी ना जाना, तो ये नहीं सही है। अच्छा, अब अगला जो है जी बहुत ही अहम, और कौन? कौन आया हुआ यहाँ पे जी। राहत आप बताएंगी। वकरह लकुम कील वकाल, कील वकाल अल्लाह ताला को पसंद नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। कील वकाल का मतलब है सुनी सुनाई बातें आगे करना। जैसे अब जैसे आज हमारी हदीस की अभी भी बातें जो हो रही हैं, तो हमने जितनी सुनी है हदीस के मुताबिक उतने ही वर्ड्स के साथ उतना ही आगे हमें बताना है। ये नहीं कि दो बातें आगे हमें बढ़ चढ़ के उसके और मतलब निकाल के तो आगे कर देना है। ये झूठ में भी आ जाता है और मना भी किया गया है कि वही आ जाता है कि तहकीक करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए कि सुनी सुनाई बातें आगे करके बताए भी। फिर वो आगे जब और थर्ड पार्टी पे जाती है वो और आगे वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, तो इस तरह नहीं करना, मना फरमाया गया है।
और आज के सोशल मीडिया के उससे आप क्या कहें?
ये भी झूठ है क्योंकि ये सुनी सुनाई बातों पे सोशल मीडिया जो है वो भड़काता है और ब्रेन वॉश करते हैं आजकल के। जैसे हम लोग तो फिर वही बात है कि सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो आजकल की जनरेशन है, जैसे हर चीजों के बारे में मैं आप मेंशन करूंगी, इस्लाम के बारे में या मुसलमानों के बारे में जो हो रहा है, ये इतना उछाला जा रहा है कि ये सुनी सुनाई बातों पे अमल नहीं करना चाहिए, तहकीक करना जरूरी है। ये नहीं कह देना उसने कहा है तो ऐसे हो गया, उसने कहा है ये बिल्कुल मना है, जायज नहीं है।
शाबाश, यानी हर तरह के उसमें देख लें आप कि कीलो काल, कीला कहा गया और काला उसने कहा, यानी बस उसने कहा उसने कहा उसने कहा उसने कहा, और बात की तय को पता ही नहीं है किस किसने क्या कहा और क्या हुआ। जो सोशल मीडिया की बात इसके अंदर बहुत ज्यादा आती, क्योंकि जब अब आजकल हमारा वास्ता और हमारा डेली का जो एक सिलसिला है वो सोशल मीडिया पे हमारी प्रेजेंस बहुत ज्यादा हर एक बंदे की हो गई है, और इसमें सुनी सुनाई बातों को आगे आगे करते जाना ये इतना कॉमन हो गया है और इतना दुख भी होता है। देखिए जिस बंदे की जिंदगी में एक मकसद होता है ना, उसके पास टाइम नहीं होता ये कीलो काल का कि कीलो वो जी फलाने का सुना है, उसने तो ऐसे कहा, सुना है उसने तो ऐसे किया, सुना ये बिल्कुल जायज नहीं है। अल्लाह ताला ने हराम किया है उन चीजों में से है जो अल्लाह को नापसंद है। अल्लाह ताला को जिन चीजों को उसने नापसंद कर दिया वो हमें कैसे उनमें इंटरेस्ट होना चाहिए बताएं, क्या हमें कैसे वो चीजें पसंद होनी चाहिए। इसी तरह ये उस दिन बात भी क्लास में भी हुई थी और मैं आप लोगों को खास तौर पे, अब आप हदीस पढ़ रहे हैं तो इस चीज पे जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए ये जो चीजें हैं ना, एक चीज कोई मिली अच्छा ये हदीस है, ये हदीस आगे फॉरवर्ड करने शुरू कर दी, या फिर आप बताएं कि ये हदीस ऑथेंटिक है कि नहीं। अब आपने क्यों पूछ रहे हैं? पूछने का मकसद ये नहीं होता कि मैंने कोई अमल करना है, मुझे कोई इसलिए तहकीक करनी है क्योंकि ये मैं आजकल इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ। बस किसी ने आपको भेजी, अब आपने पहले पूछा ये बताएं ऑथेंटिक है कि नहीं। अच्छा उनमें से जो 90% होती है ना वो ऐसे ही इधर उधर की बातें होती हैं, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती। अच्छा फिर उसके बाद अमल हमने नहीं करना होता, सिर्फ पूछ भी क्यों रहे होते हैं? ताकि हम बस अब आगे फॉरवर्ड करें। तो हमने एक ठेका ले लिया बस चीजें फॉरवर्ड करने का। मेरे ख्याल में लोग तो आधी चीजें खुद सुनते भी नहीं है और वो बस आगे से आगे आगे से आगे। जितनी मेरा ख्याल नेकी सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है ना, अगर वाकई लोग इसके ऊपर अमल करने वाले या चलने वाले होते तो आज तक सारे नेक बन चुके होते, जितनी नेकी वहां पर फैलाई जा रही है। हाँ वो तो हम तो दावा का काम कर रहे हैं, हम तो नेकी का काम कर रहे हैं, ये बड़ा ही नेकी हो रही है कि फॉरवर्ड फॉरवर्ड बातें कर रहे हैं, ना उसका अता तो ना पता आगे कि किसने कहा क्या हुआ, ये बात है भी या नहीं। और सबसे ज्यादा बुरी ये बात हो जाती है जब कभी ऐसी चीजों को फॉरवर्ड किया जाता है जैसे कि फलां बीमार है, उसने कहा है कि मेरे लिए दुआ करें, अगर आपने दुआ ना की मैं हशर के दिन आपका गिरेबान पकड़ूंगा, मैं ऐसे करूंगा, आप इतने लोगों को फॉरवर्ड करें, आप ऐसे करें। भाई ये दुआ कराने को कोई तरीका? ये तो आप दूसरे को गन पॉइंट पे दुआ करा रहे हैं। ऐसी कौन सी दुआएं होती हैं और किस दिल से कोई दुआ करेगा? और फिर वो पुरानी जमाने की वो बातें होती हैं जिनको साल साल बाद भी वो घूम घूम के फिर से आ रही होती। अब वल्लाहु आलम, वो तो हो सकता है उसको शिफा हो गई हो सकता है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये भी नहीं पता है कि ये बात सही भी है या नहीं है, ये भी कुछ नहीं पता। बस किसी ने मुझे चूके भेजी है तो मैंने, मेरा फर्ज है कि मैं आगे अब करूं, उसने कह जो दिया 10 को भेजे। ये देखें ये कीलो काल है, इसमें अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और दूसरे का भी। और जब आप किसी से सवाल पूछते हैं ना, ये बताएं ऑथेंटिक है कि नहीं, अगर तो आपने उस पे अमल करना है तो पूछे, अगर नहीं अमल करना तो फिर छोड़ दें उसको, क्या जरूरत है उस चीज को आगे आगे उस दूसरे का भी टाइम वेस्ट करना। क्या वो पहले तहकीक करे इसकी, जो बातें बिल्कुल इधर उधर की होती हैं, किसी से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो खाम खा की लोगों ने बनाई होती है, और उसके अंदर भी इतनी दफा ये पढ़ लें उतनी दफा वो पढ़ लें, जबकि हमें पता चल गया कि ऐसी चीजों को हमें नहीं अब देखना, हम पहले जो सही चीजें हैं, जो मसनून चीजें हैं, जो हमें पता है उन पे तो अमल कर लें। तो ये, और उसके बाद हमें याद भी नहीं होता, किसी से पूछ लिया होगा ना कि ऑथेंटिक है कि नहीं, उसके बाद याद भी नहीं रखना कि उसने क्या कहा था, फिर वही चीजें दोबारा आ रही होती। अगर कई हदीसें रमजान के हवाले से, जो आगे किसी को रमजान का बताएगा वो जहन्नुम से पता नहीं उसको खलासी हो जाएगी कि क्या, घूम घूम के बार बार आती जा रही, हर साल ये बताया जाता है कि ये कोई हदीस नहीं है, फिर वही आ जाती है। तो ये कई लोग काल, ये मशगला फारिग लोगों का, बेकार लोगों का ये मशगला है, लेकिन जो मकसद के साथ जिंदगी गुजारता है ना, उसके पास ये कई लोग काल का वक्त नहीं होता। इसी तरह जब हम फोन करते हैं तो तब भी उसने ऐसे कहा, उसने ये करा, उसने वो किया, यानी बस ऐसे ही इधर की उधर हांकते जाना, इधर की उधर हांकते जाना। इसी तरह आपके फेसबुक पे, इसमें ये क्या चीजें होती हैं, ये किलो काल ही तो है ना। तो ये जिसको तर्जुमा किया गया फजूल बकवास करते रहना, नहीं फजूल ही बोलते रहना, घंटा आप किसी के साथ फोन पे बात रहे हैं और उसके बाद क्या उसका हासिल था या क्या उसका रिजल्ट था, कुछ भी, बस सुनी सुनाई बातें इधर से उधर उधर से इधर। और फिर अगला जो कसरत सवाल है, वो तो अभी हमने देख ही लिया कि हमारी क्लास में ही कितने कसरत सवाल हुए, कि एक लेसन हुआ और उसके बाद जितने सवाल आए, मैं ये समझती हूँ कि पता नहीं इन्होंने कितना अमल करना है कि जितने सवाल इतनी बारीकियों में, इतनी जिसको कहते हैं ना, एक अल्लाह ताला को जो बात नहीं पसंद है वो है बाल की खाल उतारना। हम बाल की खाल उतार देते हैं, इतने सवाल करते हैं। अब उनमें से देखा जाए जिन्होंने सवाल किए हैं, क्या वो वाकई उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, कितने परसेंट उनमें से लोग अमल करने वाले, अमल के लिए नहीं बस ऐसे ही, उसमें से इतनी बारीकियां निकाल लेनी, अच्छा फिर इस चीज का क्या होगा, अच्छा फिर अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, अगर बेटी बाप से गले मिल ले तो फिर क्या हो जाएगा, अगर ऐसा ही हो जाएगा तो फिर क्या हो? भाई आप जो लेसन है उससे बोल रहे हैं, दुनिया जहान के सवाल निकाल के उसके, और फिर वो लेसन में से भी ऐसी बारीकियां निकालनी, ऐसी क्यों इस तरह के काम हम करते, जो चीज सामने है उसको हम अमल कर लें। और हाँ कोई चीज नहीं समझ आ रही, कोई मसला खुद दरपेश होता है तो उसको, लेकिन सिनेरियोज बना बना के ना, अगर ऐसा हो जाए किसी के साथ, अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, यही तो कसरत सवाल है। आपके साथ हुआ नहीं हुआ तो फिर आप क्यों कह रहे हैं, अगर हम ये पहन लेंगे तो फिर तो लोग और हमें देखेंगे, भाई आपने पहन के देखा, जब देखा ही नहीं तो फिर आप किस क्यों सिनेरियो बना बना के लेकर आ रहे हैं। तो ये चीजों से परहेज करें खुदा के लिए, बाल की खाल उतारने से। या हमें पता चला, हमने इतना बड़ा वाकया पढ़ लिया सूरह बकरा में कि उन्होंने कैसे गाय के ऊपर कितने सवाल किए थे और क्या उनको अल्लाह ताला ने उनकी मजम्मत की और उनकी एक एक बात को वहां पे कोट किया गया, पूरे कुरान के अंदर एक एक उनके एक एक सवाल को कोट करके बताया गया कि देखो इन्होंने किस तरह के फजूल सवाल की, फिर भी हम उसी डगर पे हैं, ये हमारा हाल है। तो ये उन चीजों में से है जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। फिर अगला, माल को जाया करना है, इसके ऊपर बजाय इसके कि हम ये सोचेंगे हराम है ना, आज के मुआशरे में इस पे फखर है। पता है कैसे फखर होता है, हमने अपने बच्चों को इतने पैसे दे दिए कि वो ताकि वो पतंगे ले लें, ताकि वो ये कर लें, हमने अपनी बेटी का इतने पैसों के अंदर मेकअप करवाया और उसका जोड़ा इतने का है। माल को जाया कर रहे हैं और उसके ऊपर फखर भी कर रहे हैं, हमने शादी इतने पैसों की है, हमने इस दावत के ऊपर इतना पैसा लगाया, मैंने ये अपना जोड़ा इतने का खरीदा है, जबकि वो माल का जिया है और उस पर हमारा फखर होता है। हमने मूवी इतने की बनवाई है, हमने ये इतने का किया, हम माल को जाया भी करते हैं और ऑन टॉप ऑफ इट उस पर फखर भी करते हैं। वो चीज जो अल्लाह ने हराम कर दी वो हम अपने लिए उबाई से फखर समझते हैं, ये बहुत बड़ा कारनामा है हमारा। ये देखें कि हराम में आता है ये, हम सोचते हैं मेरा माल है ना, कौन हो तुम, कौन होते मुझे बताने वाले कि जाया करना है कि नहीं, मैं जिधर मर्जी जाया करूं, चाहे फाड़ के फेंकू चाहे आग लगाऊं, नहीं आप नहीं कर सकते। ये जाया करने के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, जहां पे माल उड़ाते जाना बेकार में। अल्लाह ने माल अमानत के तौर पे दिया, उड़ाने के लिए नहीं दिया। और इसमें सारी जो हमारे पास यानी माल से जो चीजें हम खरीदते हैं वो भी इसके अंदर आ जाती हैं कि उनको मसलन बिजली को जाया कर देना, पानी को जाया कर देना, ये सारा इनके ऊपर माल खर्च होता है, हम माल जाया कर रहे हैं, ये सब इसके अंदर कवर हो जाता है। ये हदीस में इतनी सारी चीजें बताई गई, हमने थोड़ी सी चीजों को बस सोचा कि ये खाना हराम है, ये पीना हराम है, ये खाने की और पीने की चीज हमें याद होती है कि हराम है, लेकिन ये भी हराम में आता है। इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम, ठीक है, और करिहा लकुम, जो अल्लाह को नापसंद हो वो मुझे और आपको अच्छी लगनी चाहिए चीज। तो इसके बाद से हमने आइंदा कीलो काल कसरत सवाल, इससे कम अज कम हम लोग परहेज करें, जो कि ये अब हदीस पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये आपका नाम मुझे नजर नहीं आ रहा, वरना मैं ठीक शायद नीचे होगा फिर जी। नसरीन आप बताएंगी कि एक जो इज्तिहाद करने वाला है, एक हाकिम है, वो अगर तहकीक करके को गलत फैसला कर देता है तो क्या होता है?
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम
जी। ये है कि अगर कोई ये इज्तिहाद करके गलत फैसला करते हैं तो उसको एक अजर मिलेगा, अगर वो फैसला गलत है, और अगर ठीक फैसला होगा तो दोहरा अजर मिलेगा
इंशाल्लाह। यानी ऐसा है कि उसने अपने तौर पे सही नीयत के साथ, इखलास के साथ, अपनी पूरी मेहनत के साथ उसने कोई फैसला दिया है, कोई इज्तिहाद किया है। यानी इज्तिहाद तभी होता है जब कुरान और हदीस के अंदर उसका साफ वाजे कोई बात नहीं मिलती है, और वो फिर इज्तिहाद के जरिए अपने उसका फैसला देता है, उसके अंदर ही है। ये नहीं है कि आप कुरान हदीस में कोई सरी बात आ रही है या उससे कोई बात निकल रही है, उसके खिलाफ बात करके और कहना कि नहीं मुझे अब एक अजर मिलेगा क्योंकि मैंने फैसला जो दे दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि जो इज्तिहाद होता ही वहां पे है जब कि कुरान और हदीस से कोई चीज नहीं मिल रही, अब जो इस जमाने की कोई चीज है, कोई नई ऐसी कोई चीज आ गई जो उस वक्त नहीं थी, उसके ऊपर तहकीक अपने तौर पे करके, इस्तेमाल करके, डिराइव करके अहदीस से, तो उसके बाद वो कोई फैसला सुनाता है तो फिर उसको एक अजर मिलेगा अगर उसने गलत फैसला दिया। ठीक है, अजर मिलेगा ही मिलेगा चाहे फैसला सही है या गलत है। अच्छा जी जी नरगिस आप बताएंगी कि किस हालत में काजी को फैसला देने से मना किया गया है?
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। गुस्से की हालत में काजी को फैसला करने से मना किया गया है जी, देखो जब वो गुस्से में हो तो फैसला ना दे।
और अगर काजी के अलावा कोई आम लोग हैं तो वो गुस्से की हालत में दे दे,
उनको भी नहीं देना चाहिए?
किसी को भी गुस्से की हालत में फैसला नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि जो गुस्से की हालत में फैसला होगा लाजमी उसके अंदर जज्बात ऊपर आएंगे, और जब जब इंसान जज्बाती होके कोई फैसला कर लेता है तो उसके अंदर फिर कोई खैर तो नहीं होती। और आप ये देख लें कि हम लोग खास तौर पे खवातीन गुस्से की हालत में अक्सर कोई फैसले कर बैठती हैं, मसलन है कि झगड़ा हुआ शौहर के साथ तो अपना बैग बंद किया और चल पड़े, मैं जा रही हूँ, बस अब फैसला कर लिया गुस्से में। इसी तरह मर्द लोग जब गुस्से में आते हैं तो तलाक तलाक तलाक, बस मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तो गुस्से की हालत में कोई भी कोई स्टेप नहीं उठाना, कोई फैसला नहीं करना। जब हम गुस्से की हालत में ना सिर्फ ये कोई भी फैसला करते हैं, अब हस्बैंड ने कुछ कह दिया, आपकी क्लासों के बारे में कुछ कह दिया, तो आपने बस फौरन फोन उठाया और कहा अब बस मैं क्लासें क्विट कर रही हूँ, अब मैं नहीं, मेरा मैंने कोई ना कुरान पढ़ना है ना कुछ है, क्योंकि आज जो हमारे घर में हो गया कुछ तो इसलिए गुस्सा आ गया। तो गुस्से की हालत में किसी किस्म का फैसला करना भी सही नहीं है। इसी तरह आप देखते हैं ना कि बाज़ दफ़ा यंगस्टर्स गुस्से की हालत में खुदकुशी का फैसला कर लेते हैं, अपनी जान गंवा बैठते हैं, वो भी एक गुस्से का फैसला है। तो सिर्फ काजी का ही नहीं बल्कि कोई भी ये फैसला करे तो इसको कहा गया कि ये मकरूह है, ये नापसंदीदा, इसे मना किया गया है फैसला नहीं करना जब कोई गुस्से में हो, ना दो आदमियों के दरमियान किया जाए, ना किसी कोई अपने बारे में फैसले करे। जी जी, अब यास्मीन आंटी आप बताएंगी कि जिसने कोई भी बात दीन में इजाद कर ली तो उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीस है?
जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदा ये अबताल जो है वो बातिल की जमा है और बिल्कुल जस्ट लाइक बिदत कि हम दीन में वो ऐड करें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या कुरान और सुन्नत से हमें नहीं मिलता है और हम अपने तरफ से तरीके निकालें, वो बिदत कराएगी। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सख्ती से मना किया कि दीन में, इसका मतलब नऊज़ु बिल्लाह क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बताना भूल गए? अगर हम खुदा न खास अपनी तरफ से कर रहे हैं तो हमें दीन में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए।
और अगर मैं कहूँ कि जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में तो हवाई जहाज नहीं होते तो अब क्या हम हवाई जहाजों में ना बैठे?
मीन्स के लिए नहीं है कि उस वक्त उठे और आज जहाज है, मीन्स के लिए नहीं है, दीन के अंदर कोई ऐसी बात निकालना।
आपने ये बताना है कि दीन में नहीं कोई कर सकता। अब वो कहते हैं घड़ी तो उस वक्त भी नहीं इस्तेमाल होती थी, फिर आप क्यों घड़ी इस्तेमाल कर?
मीन्स की तो जाहिर है जो जो तरक्की होगी तो वो तो आप करेंगे, बट नॉट इन रिलीजन नहीं आप कर सकते दीन में।
और उस नहीं हो सकता कि वो जमाने के साथ साथ वो भी नया होता जाए और उसको भी नई नई शक्लें दे दे के और नए नए तरीके उसके अंदर लाते जाएं। इस हदीस से हमें वाजे तौर पे पता चलता है कि वो रद्द है, रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड है, वो कबूल ही नहीं होना। फिर भी उसके बावजूद हम उन हरकतों को करें और फिर सोचें, जज़ाकअल्लाह खैरन, हम सोचें कि जो है ना ये जो भी है इससे क्या फर्क पड़ता है, इसमें क्या हर्ज है? 27 रजब मनाना, उसको अंदर शब्बे मेराज मनाना, इसमें क्या हर्ज है? अगर हम उसमें नफल पढ़ लेते हैं रात को तो आपको क्या, इसे आपको क्यों परेशानी होती है? आप क्यों मना करते हैं? पढ़ने देना लोगों को तो पढ़ने दे लोगों को, ये बात नहीं है। बात ये है कि आपने एक फिक्स कर ली नाइट और उस नाइट को आपने एक खास अहमियत दे दी जो कि हमारे दीन में नहीं दी गई। वैसे आप जितने मर्जी नफल पढ़े, रोज पढ़े, आज मेरा दिल चाह रहा है या आज मैं फारिग हूँ या आज मैं कम थकी हुई हूँ तो आज मैं पढ़ लेती हूँ, अब चाहे 27 है चाहे 28 है, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस वक्त आप कोई चीज को स्पेसिफिक करके और उसको शामिल कर लें तो तब वो दीन का हिस्सा आपने बना ली और वो मना है। इसलिए ये हदीस समझना जरूरी है क्योंकि जब आप लोगों के सामने ऐसी बात रखते हैं तो वो बहसें बहुत करते हैं, कहते हैं इसमें हर्ज क्या है, इसमें मसला क्या है, इसमें ये भी तो करते हैं फिर वो भी तो करते हैं फिर उसकी कैसे इजाजत है। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है कि किस चीज से मना किया गया है। अच्छा जी जी शहनाशा आप बताएंगी कि क्या मुश्तहिदीन जो फैसला करने वाले हैं उनके दरमियान इख्तलाफ हो जाना क्या ये सही बात है या इसमें बुराई है?
सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू उस्ताजा। जी ये फितरी बात है, हो सकता है इख्तलाफ, लेकिन इस इख्तलाफ की वजह से हम अलग तंजीमें जैसे सर ने बताया था नहीं बना सकते। लेकिन इख्तलाफ का वो इख्तलाफ हो सकता है किसी सोच में।
जी इख्तलाफ होने में किसी को इल्जाम नहीं आप दे सकते कि ये क्यों इख्तलाफ हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और इस हदीस से आपको क्या पता चलता है जो दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की?
जी ये भी सेम चीज है क्योंकि यहाँ पे दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो फैसला किया था वो अपने सोच के बेसिस पे था और इनको जो मतलब जाहिर है जो दलीलें और जो उन्होंने प्रेजेंट की होंगी और फिर जब वो दोनों औरतें उस बात से खुश नहीं थी तो उन्होंने फैसला आगे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वो ले गए तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर वो हीला यहाँ पे जो उन्होंने फरमाया था कि मैं इन बच्चे को दो टुकड़े करके आपको देता हूँ तो असल में वो जानना चाहता था कि कौन इनकी असली माँ है। तो تو اس وقت ماں کے جذبات سے ان کو اندازہ ہوا کہ اسی کا بیٹا ہے, تو اس لیے کر سکتے ہیں. ایک قاضی کے علاوہ ہم دوسرے کے پاس بھی جا سکتے ہیں اگر ہمیں ہم اس فیصلے سے مطلب خوش نہیں ہیں یا مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا.
ٹھیک ہے. اچھا اس میں جزاک اللہ خیر, تھوڑا سا یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس میں اور اس میں دوسری ایک اور سینیری ہوتا ہے کہ ہم اس لیے جاتے ہیں دوسری جگہ پہ تاکہ ہماری مرضی کا فیصلہ آ جائے, ہماری حق کا فیصلہ آ جائے, جو ہم کام فار ایگزامپل جو ہم فتویٰ لینا چاہتے ہیں, جو ہم اسے حکم دلانا چاہتے ہیں وہ ہماری فیور میں آ جائے. جب تک وہ نہیں ملتا ہم بس گھومتے رہتے ہیں, اور جہاں پہ کوئی دے دیتا ہے پھر وہاں پہ ہم بس پھر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہاں پہ ایک سے دوسرے قاضی یا حاکم یا فتویٰ لینے والے کے پاس تب جایا جا سکتا ہے جب کہ آپ اصل بات تک پہنچنا چاہتے ہیں, صحیح بات جاننا چاہتے ہیں. یہاں پہ تو چلو ایک دو لوگوں میں فیصلہ ہے نا, کبھی کبھی فتویٰ بھی ہوتا ہے, تو وہ جب ہم واقعی علم لینا چاہتے ہیں اور ہمیں ایک بات نہیں سمجھ میں آ رہی اور نہیں ہمارے ذہن میں بیٹھ رہی, تو ہم دوسری جگہ سے بھی جا کے اس کو پوچھ سکتے ہیں کہ کیا واقعی اس طرح سے ہے. لیکن اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ بس میرے حق میں فیصلہ ہو جائے, کہیں ایسی جگہ سے مجھے اجازت مل جائے یہ کام کرنے کی کہ آئندہ کے لیے کبھی مجھے حجاب لینا ہے یا نہیں لینا, اس کا مجھے اجازت مل جائے تو اس کے لیے میں ہر جگہ گھومتی رہوں گی, اچھا یہاں پہ مل گئی بس یہی صحیح ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, فتویٰ شاپنگ کے لیے نہیں یہ ہونا چاہیے, بات کی تحقیق کرنے یا مسئلے کی تہ تک پہنچنے کے لیے ہو سکتا ہے. اور پھر ہم یہاں پہ جیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک فیصلہ داؤد علیہ السلام کا تھا لیکن سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ ان سے بہتر تھا, اس کا مطلب ہے کہ کوئی چھوٹا بھی بہتر فیصلہ کر سکتا ہے بڑے سے. جی ڈاکٹر کی بھی سیکنڈ اوپینین کے لیے جایا جا سکتا ہے, اور یہ ہم کرتے بھی ہیں, اس میں بھی نہیں کوئی حرج ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا داؤد علیہ السلام کو, ظاہر ہے ان کے سامنے یہ فیصلہ ہوا تھا, انہوں نے کوئی مائنڈ نہیں کیا کہ اچھا اب یہ کیوں فیصلہ دے رہا ہے یا اس کے فیصلے کو کیوں زیادہ پذیرائی ملی یا اس کا فیصلہ کیوں صحیح ہے اور تم خاموش ہو کے بیٹھو تمہیں, نہیں انہوں نے ان کو بھی فیصلہ کرنے کی اجازت دی اور ان کا فیصلے کو مانا اور اس کو اپریشیٹ کیا. ٹھیک ہے, تو ہمیں اتنا بڑا دل رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی اور بہتر فیصلہ لے کر آتا ہے تو ہمیں اس کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرے یہ جو سب سے بڑی چیز یہاں پہ پتہ چلتی ہے, اختلاف ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے, صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہو جاتا تھا رائے کا, مگر اس کی وجہ سے وہ فاروقی اور صدیقی اور عثمانی اور یہ وہ نہیں بنتے تھے, انہوں نے کوئی اپنی الگ تنظیمیں یا الگ اپنے فرقے نہیں بنا لیے تھے. اور یہ ہمیں بات سمجھنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم فرقے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا اور کافر کہنا شروع جاتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی شبنم خان آپ بتائیں گی.
جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ اگر دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے تو حاکم کو کوشش کیا کرنی چاہیے؟
حاکم کو ان میں آپس میں صلح کروانے کی کوشش کرنی چاہیے.
آپس میں صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے, چاہے اس کے لیے کوئی ایسا سلوشن نکالا جائے جس میں دونوں پارٹیز کا ایک فائدہ بھی ہو جائے اور دونوں پارٹیز کے لیے ایک اچھا وہ ہو جائے, تو دونوں میں صلح کرانا زیادہ بہتر ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اچھا پھر ہم یہاں پہ جو واقعہ دیکھتے ہیں وہ بھی بہت زبردست واقعہ ہے کہ سبحان اللہ, دو آدمی تھے اور بجائے ایک دوسرے سے کھینچا تانی کرنے کے کہ میرا اور میرا, ایک نے بھی چاہا کہ اس کو دے دے دوسرے کو, اور جو دوسرا تھا مالک پہلا جو مالک ہوا کرتا تھا وہ بھی چاہتا تھا کہ تم نے زمین خریدی ہے تو تمہارا ہی ہونا چاہیے. جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے وقت میں بھی سالے لوگ ہوا کرتے تھے, اور کیسے لوگ بے لوس ہو کے یعنی سیلف لیس ہو کے کوئی فیصلہ کرتے تھے. تو دونوں نے ایک ایک فیصلہ دیا, لیکن حاکم نے بہت ہی بہترین فیصلہ دیا کہ جس میں دونوں کا ہی فائدہ ہو گیا. اب کتاب اللقطا ہے, کتاب اللقطا انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ٹائم تھوڑا اور کر لیں گے کیونکہ اب ٹائم ہو گیا. مگر تھوڑا سا یہ بتا دوں اس چیز میں کہ اگر آپ کی کوئی گری پڑی چیز کہیں آپ کو مل جاتی ہے تو پھر उसके लिए आपको क्या करना है वो तो हमें यहाँ से रहनुमाई मिलेगी। अभी पिछले दिनों मेरे पास कोई एक मसला लेकर आया था कि मुझे कहीं किसी जगह में एक लॉन्ड्री थी, वहाँ पे मुझे $50 पड़े हुए मिल गए। तो इसका आप क्या करना चाहिए, आप क्या वो वहाँ पे खड़ी होकर साल तक ऐलान करती रहे, क्या करे वो? आप फिर इंशाल्लाह अगली दफा मैं आप लोगों से ये सवाल पूछूंगी, आप सोचिएगा इसके ऊपर। कहीं से पूछना नहीं है, खुद ही सोचिएगा कि क्या इसका सलूशन हो सकता है, कि वो क्या करे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अब हम क्लास की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइम आप इसकी तैयारी करके आइएगा इंशाल्लाह। किताब अल-फतह की सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।